रेडियो तेहरान के सभी आदरणीय श्रोताओं की सेवा में हसन अब्बास और साथियों का सलाम पहुंचे। श्रोताओं, सदा की भांति आज भी अपने कार्यक्रम का आरंभ हम पवित्र कुरान मजीद की तिलावत और अनुवाद से करेंगे। आज आप पवित्र कुरान मजीद के सूरह मारिज की 19 से लेकर 29वीं आयतों तक की तिलावत और अनुवाद सुनेंगे। कारी हैं श्री अब्दुल बासित।
अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। निसंदेह मनुष्य बड़ा लोभी है, जब उसे पीड़ा और क्षति होती है तो चीख पुकार करने लगता है, और जब उसे धन संपत्ति मिल जाती है तो कंजूस बन जाता है, सिवाय उन वास्तविक नमाजियों के कि जो सदैव नमाज में अपनी आयु बिताते हैं और जिनकी संपत्ति में एक स्पष्ट अधिकार निर्धारित होता है। मांगने वाले दरिद्रों और न मांगने वाले वंचितों के लिए, और जो लोग प्रलय के दिन की पुष्टि करने वाले हैं, और जो अपने पालनहार के दंड से डरने वाले हैं कि उनके पालनहार के दंड से कोई भी बचने वाला नहीं है, और जो अपने आप को व्याभिचार से बचाते हैं।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज शनिवार है, इस फंद की 14, शाबान की 2 और मार्च की 5 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। कार्यक्रम के बारे में अपने विचारों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारे पते नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir, जबकि ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। श्रोताओं, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सदा की भांति आप सबसे पहले देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम ईरान भ्रमण, और सभा का अंतिम और दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम होगा उज्ज्वल भविष्य। श्रोताओ, ये तो थी हमारी आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान ने रक्षा क्षेत्र में 10 उपलब्धियों का अनावरण किया। अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से अमेरिकी सीनेट की वर्चुअल बैठक में भाषण देने का आह्वान किया है। रूस ने कहा है कि पोलैंड आतंकवादियों के भेजने के गढ़ में परिवर्तित हो गया है। भारत ने कहा है कि अब भी उसके 1000 से अधिक नागरिक यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के रक्षा मंत्री की उपस्थिति में रक्षा के क्षेत्र में 10 चीजों का अनावरण किया गया। रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा आश्तियानी की उपस्थिति में 10 रक्षा उपलब्धियों का अनावरण किया गया। इनमें से 7 का संबंध थल सेना से, 2 का संबंध वायुसेना से और 1 का संबंध नौसेना से है। रक्षा मंत्री ने ईद मबास और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जन्मदिवस की मुबारकबाद दी और पासदार दिवस पर प्रकाश डालते हुए कहा, रक्षा मंत्रालय में रक्षा के क्षेत्र की नीतियों और उद्देश्यों का निर्धारण कर दिया गया है और रक्षा उद्योग ने भी अच्छा नतीजा हासिल कर लिया है। जिन रक्षा उपकरणों का अनावरण किया गया, रक्षा मंत्री ने उनके महत्व की ओर संकेत करते हुए कहा कि इन चीजों ने थल, जल और वायु सेना और वायु क्षेत्र में सेना की शक्ति में वृद्धि कर दी है। इसी बीच एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर सरदार हजीजादे ने ईरान के मिसाइल क्षमता में 6 से 7 बराबर की वृद्धि की सूचना दी है। आज ईरान मिसाइलों और ड्रोनों का अनावरण किया गया और उन्हें अब सेना के हवाले कर दिया गया। ये पहली बार है जब सिपाही बाजदार की वायुसेना ने जमीन के नीचे ड्रोन विमानों का अनावरण किया है। मिसाइलों और ड्रोनों के अनावरण कार्यक्रम में सिपाही पासदारान की वायुसेना के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हजीजादे ने कहा कि तैयारी और मिसाइल फायर करने के समय के बीच की दूरी बहुत कम हो गई है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि इस केंद्र से एक साथ 60 ड्रोन विमानों को उड़ाया जा सकता है और इन ड्रोनों की उड़ान सीमित नहीं है और इन ड्रोनों से हर दुश्मन को लक्ष्य बनाया जा सकता है। ज्ञात है कि 3 शाबान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शुभ जन्मदिन है और इस दिन को ईरान में पासदार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक रफाइल ग्रोसी का ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रवक्ता कमल वंदी ने शनिवार को तेहरान में स्वागत किया। IAEA के महानिदेशक ईरान के परमाणु विषय के कुछ मतभेद वाले मुद्दों के समाधान और तेहरान तथा IAEA के बीच सेफगार्ड के विषय पर चर्चा करने के लिए तेहरान की यात्रा पर हैं। वो अपनी इस यात्रा के दौरान ईरान और IAEA के बीच तकनीकी सहयोग जारी रहने के विषय पर भी विचार विमर्श करेंगे। जब से राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी चुनाव जीतकर सत्ता में आए हैं, तब से IAEA के महानिदेशक का यह तेहरान का 3रा दौरा है। IAEA के महानिदेशक का तेहरान का यह दौरा हालिया कुछ सप्ताह के दौरान IAEA और ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के अधिकारियों के बीच होने वाली सघन वार्ताओं के बाद अंजाम पा रहा है। इस यात्रा के दौरान रफाल ग्रोसी ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट वार्ता करेंगे। ईरान विरोधी प्रतिबंधों को हटाने के लिए वियना में होने वाली वार्ता के बीच रफाल ग्रोसी का तेहरान दौरा ऐसी हालत में हो रहा है कि अभी तक कुछ मामलों पर मतभेद बाकी है और अभी तक ये पता नहीं है कि अंतिम सहमति कब हो पाएगी, इसलिए ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये बात भी महत्वपूर्ण है कि ज़ायनी शासन ने भी वियना में अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है जो वियना वार्ता के माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहा है और अभी तक इसराइल को वियना वार्ता से निराशा ही हाथ लगी है। इसके बावजूद वो लगा हुआ है और उसे उम्मीद है कि वो अपनी विध्वंसक कार्रवाइयाँ द्वारा अपने लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए इस आखिरी अवसर से भरपूर लाभ उठा लेगा। ईरान IAEA से अपने मतभेदों और विवादों को हल करने की इच्छा रखता है और पिछले 10 दिन के दौरान तेहरान और IAEA के बीच वार्ता बहुत ही जटिल और कठिन रही, लेकिन दोनों ही पक्षों के आपसी सहयोग से यह कठिन चरण भी आसानी से गुजर गया।
रूस यूक्रेन के मध्य युद्ध जारी रहने का आज 10वां दिन है। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से अमेरिकी सीनेट की वर्चुअल बैठक में भाषण देने का आह्वान किया है। हिल समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सीनेट की जो वर्चुअल बैठक आज शनिवार को होने वाली है, उसमें अमेरिकी सीनेटर जब से रूस यूक्रेन युद्ध आरंभ हुआ है तब से पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। ये बैठक ऐसी स्थिति में होने वाली है जब अमेरिकी सीनेटर यूक्रेन की सहायता के लिए अरबों डॉलर पारित करने वाले हैं। आज की वर्चुअल बैठक आरंभ होने से पहले अमेरिकी सीनेटरों के एक गुट ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और इस देश के कुछ दूसरे अधिकारियों से वर्चुअल मुलाकात की। अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ने अमेरिकी सीनेटरों से मुलाकात में कहा था कि रूस से मुकाबले के लिए उनके देश को अधिक सैन्य हथियारों की आवश्यकता है। इसी प्रकार यूक्रेनी सांसदों ने अमेरिकी सीनेटरों से वर्चुअल मुलाकात में बल देकर कहा है कि यूक्रेन में उड़ान वर्जित क्षेत्र के बिना अधिक लोग मारे जाएंगे। ज्ञात रहे कि यूक्रेन में उड़ान वर्जित क्षेत्र की मांग का अमेरिका की दोनों पार्टियों ने विरोध किया है और कहा है कि इससे रूस से सीधे सैन्य टकराव का खतरा बढ़ जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित दुनिया के नेताओं से टेलीफोनी वार्ता में बारंबार क्यू के समर्थन का आह्वान किया है। इससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से देश छोड़ने का आह्वान किया था, जिसकी प्रतिक्रिया में ज़ेलेंस्की ने कहा था कि हमें लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत है, न कि भागने के लिए गाड़ी की।
रूस की विदेश खुफिया संस्था SVR ने ऐलान किया है कि पोलैंड विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से आतंकवादियों को यूक्रेन भेजने के गढ़ में परिवर्तित हो गया है। समाचार एजेंसी IRNA की रिपोर्ट के अनुसार रूसी टीवी ने इस देश की विदेशी खुफिया संस्था के हवाले से घोषणा की है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और नाटो ने सदस्य दूसरे देशों की खुफिया संस्थाओं ने यूक्रेन की खुफिया संस्था के साथ अपने संबंधों को सुरक्षित रखा है। इसी प्रकार रूस की विदेश खुफिया संस्था की रिपोर्ट में आया है कि पश्चिमी देशों की खुफिया संस्थाएं इस बात की जानकारी यूक्रेन की खुफिया संस्था को दे रही हैं कि रूसी सैनिक कारवां किस रास्ते से जा रहे हैं। रूसी प्रतिरक्षा मंत्रालय से संबंधित टीवी ने ऐलान किया है कि अमेरिका सीरिया से हजारों आतंकवादियों को यूक्रेन भेजने की चेष्टा में है और इस कार्य के लिए उसने कार्यक्रम बना रखा है। रूसी टीवी के अनुसार सीरिया में आतंकवादी उन क्षेत्रों में हैं जो इस देश की सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं और इन आतंकवादियों को विमानों से यूक्रेन पहुंचाया जाएगा। गुरुवार को रूसी संचार माध्यमों ने भी सूचना दी थी कि बड़े पैमाने पर विदेशी लड़ाकों को रूसी सैनिकों से लड़ने के लिए यूक्रेन भेजा जा रहा है।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। रूस की बमबारी में अब तक 10 से अधिक शहर चपेट में आए हैं। रूसी सेना ब्लैक सी के यूक्रेनी कोस्ट गार्ड के निकट पहुंच गई है। रूस कभी भी माइकोलोवी कोस्ट गार्ड पर अटैक कर सकता है। पेंटागन ने दावा किया है कि लगभग 1.5 लाख रूसी सैनिकों ने कीव और खार्किव को घेर लिया है। यूक्रेन पुलिस ने शुक्रवार को दावा किया कि कीव के पास ग्रामीण क्षेत्र में रूसी हवाई हमले में 2 बच्चों सहित कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार रूस द्वारा एयर स्ट्राइक कीव से दक्षिण पश्चिम में करीब 10 किलोमीटर की स्थित पर दूर एक गांव में हुई। उधर रूसी मीडिया ने दावा किया है कि नेटो के सदस्य देश यूक्रेन में आतंकवादी लड़ाकों को भेज रहे हैं। रूसी खुफिया एजेंसी ने अपनी सेना को भेजी जाने वाली चेतावनी में ये बात कही। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद दूसरी बार यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने वीडियो पोस्ट करके दावा किया है कि वो देश छोड़कर भागे नहीं हैं। इंस्टाग्राम पर ज़ेलेंस्की ने वीडियो पोस्ट किया जिसमें उनका कीव ऑफिस और वहां बैठा एक अधिकारी दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कीव में हूं और यहां काम कर रहा हूं, कोई भी भागा नहीं है। ज्ञात है कि इससे पहले रूसी मीडिया ने दावा किया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूक्रेन छोड़ दिया है और वो पोलैंड चले गए हैं।
हिजबुल्ला के नेता ने यूक्रेन में घटने वाली घटनाओं का जिम्मेदार अमेरिका को बताया है। हिजबुल्ला की कार्यकारी परिषद के उप प्रमुख अली दामोश ने कहा है कि यूक्रेन असल में अमेरिकी नीतियों की भेंट चढ़ा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संकट से ये पाठ मिलता है कि अपने घटकों से अमेरिकी समर्थन केवल मृग तृष्णा है और उसके दावे की कोई वास्तविकता नहीं है। अली दामोश के अनुसार यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति दोनों ही इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि अमेरिका पर भरोसा करने के बावजूद उसने उन्हें बुरे वक्त में अकेला छोड़ दिया। उनका कहना था कि जो लोग प्रगति, विकास और मानवाधिकारों की सुरक्षा के दावे करते नहीं थकते, उनके व्यवहार में आज भी जातिवाद की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप में हम इस बात के साक्षी हैं कि वहां पर कालों के साथ कितना भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है।
भारत का कहना है कि अब भी 1000 से अधिक भारतीय नागरिक यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 1000 से अधिक भारतीय अभी भी युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। भारतीयों को यूक्रेनी सेना द्वारा बंधक बनाए जाने के रूस के आरोपों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ये बात दोहरा रहे हैं कि हमें किसी भारतीय को बंधक बनाए जाने की जानकारी नहीं है। खार्किव में सुरक्षा कारणों से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बंधक जैसी कोई स्थिति नहीं है। युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में भारतीय दूतावास की एक टीम ने पोलैंड की सीमाओं का दौरा किया।
पाकिस्तान के पेशावर के किस्सा खानी बाजार क्षेत्र के कुचिये रिसालदार की जामा मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान होने वाले आत्मघाती आतंकी हमले में शहीद होने वालों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है, जबकि 194 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने घटना को आत्मघाती हमला करार दिया था और आरंभिक रूप में कहा गया कि 2 हमलावर थे, किंतु बाद में जारी होने वाले सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया कि काले रंग की शलवार कमीज में एक हमलावर मस्जिद तक पैदल ही जाता है और पिस्तौल से गेट पर खड़े पुलिसकर्मी पर हमला कर देता है। हमलावर ने मस्जिद में घुसने की कोशिश से रोकने वाले व्यक्ति पर भी फायरिंग की और फिर तेजी से मस्जिद के अंदर घुसकर वहां भी फायरिंग करता है और खुद को धमाके से उड़ा लेता है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। IAEA के प्रमुख की ईरान यात्रा, यूक्रेन में दाइश के इस्तेमाल की तैयारियां और गुपकार गठबंधन के बयान के मुद्दों को आज की चर्चा में हम शामिल करने जा रहे हैं। तकनीकी सहयोग जारी रखने के बारे में चर्चा करने के उद्देश्य से रफाइल ग्रोसी तेहरान में हैं। विस्तार से बता रहे हैं अख्तर अब्बास।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक रफाइल ग्रोसी का ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रवक्ता कमाल वंदी ने शनिवार को तेहरान में स्वागत किया। IAEA के महानिदेशक ईरान के परमाणु विषय के कुछ मतभेद वाले मुद्दों के समाधान और तेहरान तथा IAEA के बीच सेफगार्ड के विषय पर चर्चा करने के लिए तेहरान की यात्रा पर हैं। वो अपनी इस यात्रा के दौरान ईरान और IAEA के बीच तकनीकी सहयोग जारी रहने के विषय पर भी विचार विमर्श करेंगे। जब से राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी चुनाव जीतकर सत्ता में आए हैं, तब से IAEA के महानिदेशक का ये तेहरान का तीसरा दौरा है। IAEA के महानिदेशक का तेहरान का ये दौरा हालिया कुछ सप्ताह के दौरान IAEA और ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के अधिकारियों के बीच होने वाली सघन वार्ताओं के बाद अंजाम पा रहा है। इस यात्रा के दौरान रफाइल ग्रोसी ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट वार्ता करेंगे। ईरान विरोधी प्रतिबंधों को हटाने के लिए वियना में होने वाली वार्ता के बीच रफाइल ग्रोसी का तेहरान दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक कुछ मामलों पर मतभेद बाकी हैं और अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि यह सहमति कब तक हो पाएगी। यहाँ पर यह बात भी महत्वपूर्ण है कि ज़ायोनिस्ट शासन ने भी वियना में अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है, जो वियना वार्ता के माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहा है, और अभी तक इसराइल को वियना से निराशा ही हाथ लगी है। इसके बावजूद वो लगा हुआ है और उसे उम्मीद है कि वो अपनी विध्वंसक कार्रवाइयों द्वारा अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए इस आखिरी अवसर से भरपूर लाभ उठा सकेगा। ईरान IAEA से अपने मतभेदों और विवादों को हल करने की इच्छा रखता है और पिछले 10 दिन के दौरान तेहरान और IAEA के बीच वार्ता बहुत ही जटिल और कठिन रही, लेकिन दोनों ही पक्षों के आपसी सहयोग से ये कठिन चरण भी आसानी से गुजर गया।
रूस की गुप्तचर सेवा का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन में दाइश के आतंकवादियों को प्रयोग करने की तैयारी अब पूरी कर चुका है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ उपस्थित हैं सैयद मीसम।
रूस की विदेश खुफिया एजेंसी SVR ने शुक्रवार को एक बयान जारी करके कहा है कि अमेरिका सीरिया की अलतनफ छावनी में दाइश के आतंकवादियों को यूक्रेन में लड़ाई की ट्रेनिंग दे रहा है। सीरिया स्थित अलतनफ सैन्य छावनी पर अमेरिका का कब्जा है और वहां दाइश के आतंकवादियों को लड़ाई की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके बाद उन्हें यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा जाएगा। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी दावा किया था कि अब तक करीब 16,000 विदेशी लड़ाके रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन पहुंच चुके हैं। SVR की इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से वाशिंगटन ने सीरिया और इराक में दाइश के आतंकवादियों को अपने हितों को साधने के लिए इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्हें अफगानिस्तान पहुंचाया, अब उसी तरह से वे उनका इस्तेमाल यूक्रेन में करना चाहते हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश दाइश के आतंकवादियों द्वारा हिंसा और रक्तपात के डरावने दृश्यों से रूसी नागरिकों में डर पैदा करना चाहते हैं, ताकि वे अपने सैनिकों को खतरे में देखकर यूक्रेन युद्ध के खिलाफ सड़कों पर निकल आएं। रूसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि US सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और US आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस कमांड पश्चिम एशिया और अफ्रीकी देशों में दाइश की नई शाखाओं का गठन कर रहे हैं, जिन्हें नाटो खुफिया सेवाओं की मदद से यूक्रेन को स्थानांतरित किया जाएगा। पोलैंड के माध्यम से यूक्रेन में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना और रूसी सैनिकों को निशाना बनाना अमरीका की योजनाओं में से एक है। रूस ने अमरीका की इस योजना को लेकर चेतावनी जारी की है और मध्य एशियाई देशों को सचेत किया है। अमरीका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भी यूक्रेन की मिसाल अफगानिस्तान से देते हुए कहा था कि जिस तरह से 1980 के दशक में अमरीका और पश्चिमी देशों ने अरब देशों के साथ मिलकर अफगानिस्तान में इस्लामी मुजाहिदीन को हथियार और ट्रेनिंग दी थी, उसी तरह से यूक्रेन में भी रूस को टक्कर दी जा सकती है। गौरतलब है कि 1970 के दशक के अंत में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के हमले के बाद अमरीका और उसके सहयोगियों ने न सिर्फ अफगान लड़ाकों के लिए हथियारों की आपूर्ति की थी बल्कि अलकायदा जैसे खूंखार आतंकवादी गुटों को भी जन्म दिया था, जिसने बाद में चलकर अमरीका में 9/11 जैसी घटना को अंजाम दिया।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
और श्रोताओं, अब रुख करते हैं हम भारत का। गुपकार गठबंधन का कहना है कि भारत की केंद्र सरकार कश्मीर के लिए कोई विकास का काम नहीं कर रही है। श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन की रिपोर्ट।
मेनस्ट्रीम गुटों के सबसे बड़े गठबंधन गुपकार अलायंस के दिग्गज नेता और जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से नई दिल्ली की मौजूदा प्रशासन जो दावे कर रहे हैं वो झूठ पर मबनी है। उन्होंने कहा कि उनके संगठन ने जम्मू कश्मीर के हवाले से एक व्हाइट पेपर जारी किया है, अभी तक उसका जवाब नहीं आया। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में एक समारोह के बीच पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर कहीं पर भी तैमीर तरक्की का नामो निशान नहीं है, परंतु कागजों में ऐसा दिखाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर ने काफी तरक्की की। उन्होंने कहा कि भारत के गृह मंत्री आए दिवस चुनावी जनसभाओं में कश्मीर को भारत का ताज घोषित करते हैं, परंतु कश्मीरी लोगों के साथ उन्होंने क्या किया ये अब लोगों के सामने है। उन्होंने कहा कि हमने बार बार नई दिल्ली को समझाने का प्रयास किया, परंतु वो अपने दल के हितों में काम करते हैं, उन्हें देश का हित कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव आने वाले हैं और अगर ये सच है तो उनको पता चलेगा कि ये कहां पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में काफी ज्यादा गमो गुस्सा है और वो दिखा देंगे उनका असली चेहरा क्या है।
इस घर में बहुत बड़ा सानिया हुआ था, शेरपथरी में दो जवान बच्चे एक हादसे में गुजर गए। वहाँ रास्ते में मैंने एक बहुत बड़ी चीज देखी कि पाइपें बहुत पड़ी हुई है, उसका मतलब है कि वाटर सप्लाई स्कीम का कुछ मसला होगा और मुझे लगता है कि वो साला साल से पड़ी हुई है। मैं आपकी वसादत से हुकूमत से जरूर कहूंगा कि अगर इन्होंने पाइपें लाई हैं और इतना खर्चा किया है तो उसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए, तो कब तक कि उसको उन पाइपों को इस्तेमाल करें लोग उससे फायदा उठा सके। मैं समझता हूँ इसकी तरफ जब अब मुझे मौका मिलेगा अफसरों से बात करने का कुछ दिनों में, तो मैं यहाँ पे गांधरबल में इनसे पूछूंगा, क्योंकि मुझे कामों का पता लगेगा कि क्या क्या काम हुए हैं और क्या पाए तकमील तक नहीं पहुंचे और उनकी वजह क्या है। क्योंकि अगर ये कहते हैं कि हमने बहुत काम किए हैं तो वो बताएं कहाँ वो काम किए हैं, मैं देखूंगा। मुझे तो आप भी सुनेंगे उस दिन। इक्तदार के लिए तो वो लड़ रहे हैं ना, अगर वो लोगों को खरीद रहे हैं तो किस लिए खरीद रहे हैं? इक्तदार के लिए तो खरीद रहे हैं, वो क्या कोई खुदाई काम के लिए खरीद रहे हैं?
इस बीच जम्मू कश्मीर में एक तरफ हिंसक घटनाओं का क्रम भी जारी है तो दूसरी तरफ आग की घटनाओं में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। श्रीनगर के मेन हॉस्पिटल बोन एंड ज्वाइंट में कल शाम को एक घटना घटी जिससे आग ने पूरे हॉस्पिटल को अपने लपेट में ले लिया। अगरचे फौरी तौर पर स्थानीय लोगों ने मिलजुल कर जो वहां पर पेशेंट मौजूद थे उन्हें बचाने का भरपूर प्रयास किया और उन्हें बचा भी लिया गया है, परंतु अस्पताल मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुआ है। इस अवसर पर श्रीनगर के मेयर जुनेद मत्तू ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा,
अभी असर्टेन हो रहा है, उसमें तो कॉज ऑफ फायर में टाइम लगेगा, वो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, लेकिन मैं पहले कल भी मैंने ये कहा, आज भी कहूंगा, जो लोकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स यूथ थे इलाके के, SDRF टीम्स, पुलिस टीम्स, यहाँ का खासकर जो डॉक्टर और तिब्बी अमला है, उनने मेरी आंखों के सामने कल अपनी जान पे खेल के पेशेंट्स को निकाला और मुझे लगता है करीबन 11:30 तक आग पे कंट्रोल हो गया था और बहुत ही एक डिवास्टेटिंग फायर था। फायर सर्विसेज ने भी एक टाइम ऐसा आया जब वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के भी ब्लास्ट हुए, तो उस वक्त फायर सर्विसेज का जो क्रू है, उनके जो लड़के हैं, नौजवान हैं, वो अंदर बिल्डिंग में आग के अंदर गए, तो अल्लाह ताला उनको इसका जजा दे, उनने बहुत मेहनत की। जो कॉज ऑफ फायर है वो असर्टेन होगा, एक ऑफिशियल डेलीगेशन भी अभी आई है, सो आई एम श्योर इट विल बी असर्टेन इन ड्यू कोर्स।
सिप्टी मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम दोस्तों अभी आपने सुना। इस दैनिक कार्यक्रम के बाद अब हम पेश करेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम उज्जवल भविष्य, किंतु उससे पहले प्रस्तुत है एक अन्य साप्ताहिक कार्यक्रम ईरान भ्रमण।
ईरान भ्रमण।
दोस्तों, कार्यक्रम ईरान भ्रमण के करने कड़े के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम आपको कज़विन के आकर्षणों के बारे में बताएंगे।
दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने आपको कज़विन के इतिहास के बारे में बताया था। ये नगर 57 वर्षों तक ईरान की राजधानी भी रह चुका है। यही कारण है कि कज़विन नगर बहुत सी ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। इतिहास के विभिन्न कालों में कज़विन उज्ज्वल व समृद्ध संस्कृति का स्वामी था। इसी प्रकार ये क्षेत्र प्राचीन समय से ईरान के विशाल पठारी क्षेत्र में मानव जाति का महत्वपूर्ण निवास स्थल माना जाता है।
मौजूद अवशेषों से कज़विन के हजारों वर्ष पुराने इतिहास की पुष्टि होती है। दस्तावेजों के अनुसार कज़विन माद शासन श्रृंखला के काल में आबाद हुआ था। इस्लाम के उदय के बाद कज़विन में पहली हिजरी शताब्दी से तीसरी हिजरी शताब्दी के दौरान बहुत से राजनीतिक परिवर्तन हुए। 5वीं हिजरी शताब्दी के अंतिम वर्षों से वर्ष 645 हिजरी कमरी में इस्माइलियों के किलों पर हलाकू खान के हमले के समय तक ये क्षेत्र इस्माइली शासन श्रृंखला के अधीन था।
कुछ इतिहासकार कज़विन शहर की संरचना को सासानी शासक शापूर के समय से बताते हैं। इस शहर के चारों ओर बहुत पहले उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले दैलमियों के हमले से बचाने के लिए एक प्राचीर बनाई गई थी। कज़विन की भौगोलिक स्थिति, उपजाऊ मैदानी क्षेत्र, अनेक जातियों के रीति रिवाजों व संस्कृतियों से संपर्क वे तत्व हैं जिसने कज़विन को जीवित व समृद्ध रखा है।
कज़विन शहर अपने प्राचीन ऐतिहासिक व राजनीतिक महत्व के दृष्टिगत शासकों के लिए ये मूल्यवान स्थान रहा है और सफ़वी शासनकाल में कुछ समय तक राजधानी भी था। इस शहर में अभी भी ऐतिहासिक संरचना मौजूद है। ऐतिहासिक मस्जिद, सरकारी इमारतें, शहर के दरवाजे, कब्रिस्तान, प्राचीन टीले और खुदाई में मिलने वाली वस्तुएं इस शहर के प्राचीन इतिहास की गाथा सुनाती है।
कज़्विन में पर्यटकों को आकर्षित करने की बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। कज़्विन में पाए जाने वाले प्राचीन बाजार बहुत ही सुंदर और देखने के लायक हैं। इसकी एक विशेषता यह है कि हर देखने वाले को ये अपनी ओर आकर्षित करता है। कज़्विन के प्राचीन बाजार को इस नगर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है। ये बाजार 14 हेक्टेयर के भूभाग पर फैला हुआ है। इतिहासकारों का कहना है कि इसका संबंध 5वीं हिजरी कमरी से है।
ईरान में सफवियों और गाजारियों के शासनकाल में कज़्विन के इस प्राचीन बाजार की मरम्मत करवाई गई। सफवी शासनकाल में इस बाजार में विस्तार हुआ। इस बाजार की एक विशेषता यह है कि इसमें बहुत से रास्ते हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं और इंसान गुम नहीं हो पाता। कज़्विन के इस प्राचीन बाजार में विभिन्न नामों से कुछ हिस्से विशेष हैं, जैसे सादुस्सल्तना वजीर और हज रजा धर्मशालाएं। इस बाजार के भीतर मस्जिद और हमाम या स्नानगृह भी मौजूद हैं।
इस बाजार को मूल रूप में दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक वो भाग जहां पर वस्तुएं बेची जाती हैं, जिसको तीमचे कहते हैं। दूसरा वो स्थान जहां पर लोहार, बर्तन बनाने वाले और इसी प्रकार के पेशे के लोग अपने काम करते हैं, इसको कैसरी ये कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ भी की जाती हैं, किंतु आस्था के दृष्टिगत इसके भीतर मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया है।
कज़्विन बाजार की इमारत की वास्तुकला बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। इसमें रंगीन टाइलों का भी प्रयोग किया गया है। इस बाजार के भीतर गुंबद भी बने हुए हैं, जिनसे प्रकाश नीचे आता है। इसमें बनाए गई दुकानें कई मंजिला हैं, जबकि कहीं कहीं पर दो मंजिला दुकानें भी बनी हुई हैं, जिनको हुजरा भी कहा जाता है। कज़्विन के बाजार के भीतर बनी हुई धर्मशालाओं में से एक सादुस्सल्तना कारवानसरा है। इसकी वास्तुकला ने बाजार को विशेष आकर्षण प्रदान किया है। इस धर्मशाला का संबंध नासिरुद्दीन शाह के काल से है। ये बाजार 26,000 वर्ग मीटर में बना हुआ है। ये कारवानसरा ईरान में नगरों के भीतर बनाई जाने वाली धर्मशालाओं में सबसे बड़ी है। इसके भीतर 6 प्रांगण हैं।
कज़्विन के प्राचीन बाजार में उपहार के लिए देने के उद्देश्य से बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर स्थानीय मिठाइयाँ भी बिकती हैं। हाथ से बनाई गई बहुत सी स्थानीय वस्तुओं को इस बाजार से कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। कज़्विन नगर में बहुत से संग्रहालय हैं, जैसे सुलेखन, मानव विज्ञान, कृषि, कला, संस्कृति और आशूरियान संग्रहालय आदि। इतने अधिक संग्रहालयों के कारण कज़्विन नगर को संग्रहालयों का नगर भी कहा जाता है। इन संग्रहालयों में से कुछ के बारे में यहाँ पर हम आपको बताएंगे।
इस नगर के संग्रहालय जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो नगर का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, जिसे दौलत खाने सफवी कहा जाता है। यह कज़्विन के प्राचीन बाजार के निकट स्थित है। इन संग्रहालयों में विभिन्न कालों से संबंधित वस्तुओं को देखा जा सकता है। संग्रहालय में मौजूद वस्तुओं को कुछ भागों में बांटा गया है। इनमें से बहुत सी वस्तुएं ईसा पूर्व से संबंधित हैं, जो सामान्यतः मिट्टी के तथा कांसे के बर्तनों के रूप में हैं। इन वस्तुओं में से कुछ को 300 वर्ष ईसा पूर्व बताया जाता है, जबकि कुछ को 100 वर्ष ईसा पूर्व बताया जाता है।
कज़्विन के संग्रहालय में रखी हुई कुछ वस्तुओं का संबंध इस्लाम के आरंभिक काल से है, जिनमें एक प्राचीन दरवाज़ा है। लकड़ी का बना हुआ ये दरवाज़ा इस्लाम के उदय के आरंभिक काल से संबंधित बताया जाता है। इसको देखकर पता चलता है कि उस काल में लोग कला के क्षेत्र में कितने दक्ष हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त कज़विन के संग्रहालय में अशकानियों से काजारियों के काल के सिक्के, मोहरे और कुछ अन्य वस्तुएं भी रखी हुई हैं।
कज़विन के संग्रहालय से थोड़ी दूर के फासले पर सफ़वी काल का एक शाहकार मौजूद है। ये चहल सुत नाम की एक इमारत है। ये इमारत शाह तहमास प्रथम के काल का एक किला है, जो एक बहुत ही घने और खूबसूरत बाग में स्थित है। इस बाग में अधिकांश चिनार के पेड़ लगे हुए हैं। दो मंजिला ये इमारत आठ कोणीय है। इसकी दीवारों पर जानवरों, शिकारगाहों और कई प्रकार की वनस्पतियों की पेंटिंग की गई है। सन 1958 में इस इमारत को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखा जाता था, जिसके भीतर बहुत सी प्राचीन चीज़ें थीं। आपके लिए ये जानना भी उचित होगा कि कज़विन नगर को प्राचीन काल से सुंदर हस्तलिपि के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। इस नगर में मीर इमाद हसन कज़विनी, रदविश अब्दुल मजीद और मिर्ज़ा गुलाम रजा जैसे महान लोगों का नाम लिया जा सकता है।
कज़विन का मानव विज्ञान संग्रहालय पर्यटकों को इस क्षेत्र, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के इतिहास तथा इस क्षेत्र की संस्कृति से अवगत करवाता है। इस संग्रहालय को कज़विन के प्राचीन स्नान गृह या हमाम के स्थान पर बनाया गया है, जिसे हमाम फज्र के नाम से लोग जानते थे। प्राचीन काल में ईरान में घरों में व्यक्तिगत हमाम नहीं होते थे, बल्कि हर बस्ती, नगर या क्षेत्र में सार्वजनिक हमाम बनाए जाते थे। इर्द गिर्द के लोग वहीं जाकर नहाते धोते थे। अब इन हमामों का चलन समाप्त होता जा रहा है, लेकिन इनको ईरान में एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में देखा जाता है।
कज़विन के इस हमाम को सन 1057 में बनाया गया था। इसको अमीर कुने खान ने बनवाया था, जो शाह अब्बास के निकटतम लोगों में से थे। अब ये मानव विज्ञान संग्रहालय के रूप में मौजूद है। इस संग्रहालय में लोगों के दैनिक जीवन को मूर्तियों के माध्यम से पेश किया गया है। इसको अब ईरान की राष्ट्रीय धरोहरों की सूची में पंजीकृत किया जा चुका है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
उज्ज्वल भविष्य।
दोस्तों, कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूं। सैयद मीसम का सलाम स्वीकार कीजिए। इस कार्यक्रम में हम पहलवी शासनकाल में ईरान की सांस्कृतिक स्थिति और देश में अश्लीलता को बढ़ावा देने की चर्चा करेंगे। ईरान की इस्लामी क्रांति ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्तर पर बुनियादी परिवर्तन उत्पन्न किया है। ये उपलब्धियां ऐसी परिस्थितियों में हासिल की गई हैं जब ईरान को चार दशकों से ज्यादा से विभिन्न प्रकार की साजिशों, धमकियों, हमलों और प्रतिबंधों का सामना रहा है। ईरान के दुश्मनों की फहरिस्त में सबसे ऊपर अमेरिका और इसराइल हैं। इन दुश्मनों ने मीडिया के साम्राज्य द्वारा ईरान की छवि खराब करने और इसे एक पिछड़ा देश दर्शाने का प्रयास किया है। हालांकि 8 वर्षीय युद्ध और प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, ऐसी प्रगति की जिसकी तुलना इस्लामी क्रांति से पहले की प्रगति से नहीं की जा सकती। इस्लामी क्रांति के बाद की प्रगति और विकास को समझने के लिए हमने पिछले कुछ कार्यक्रमों में देश की उस समय की राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया था और ये साबित किया था कि शाही शासनकाल में ईरान पूरी तरह से अमेरिका और दूसरी पश्चिमी शक्तियों पर निर्भर था। मोहम्मद रजा पहलवी और उसके पिता की समाज में कोई लोकप्रियता नहीं थी। आज के कार्यक्रम में हम उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। ईरान की इस्लामी समृद्ध संस्कृति को बदलना पहलवी शासनकाल की प्राथमिकता थी। इस दौरान पहलवी शासन और उसके दरबारियों द्वारा पश्चिम को लोगों के लिए एक आदर्श और मॉडल के रूप में पेश किया जाता था। उदाहरण के लिए पश्चिम से प्रभावित एक प्रमुख बुद्धिजीवी मिर्जा मलिक खान ने ईरान में संवैधानिक क्रांति के दौर में लिखा था, मैं इतना कह सकता हूं कि हम शासन के मामलों में ना ही कोई आविष्कार कर सकते हैं और ना ही हमें अपनी ओर से कुछ ऐसा करना चाहिए। या तो हमें फिरंगिस्तान के विज्ञान और अनुभवों का अनुकरण करना चाहिए या हमें अपने बर्बर दायरे से बाहर कदम नहीं निकालना चाहिए। पहलवी शासनकाल की सांस्कृतिक धार्मिक नीतियां आमतौर पर दो स्रोतों, पश्चिमी आधुनिकीकरण और समाज का धर्मनिरपेक्षीकरण से प्रेरित थीं। इसलिए रजा शाह ने पश्चिमी शैली और पद्धति का इस्तेमाल करते हुए संस्कृति और धर्म के स्तर पर एक नई पहचान गढ़ने की कोशिश की, ताकि धार्मिक लोगों को सीमित करके और प्राचीन ईरान पर अधिक ध्यान देकर पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए ईरान की प्राचीन संस्कृति को बढ़ावा देने का हवाला दिया गया, ताकि एक अलग रूप में पश्चिमी संस्कृति का विस्तार किया जा सके। देश की आधिकारिक तारीखों को हिजरी शमसी से हिजरी शमसी शहंशाही कैलेंडर में बदल दिया गया। प्राचीन संस्कृति और सभ्यता पर ज्यादा जोर दिया गया। ईरान के प्राचीन शासकों पर गर्व और उनका गुणगान किया गया। पर्सपोलिस में 2500 साला शहंशाही और ताजपोशी के जश्न का आयोजन किया गया। हालांकि इमाम खुमैनी जैसे धर्मगुरुओं और लोगों ने शाह की इस तरह की नीतियों का जमकर विरोध किया। मोहम्मद रजा पहलवी और उसके पिता ने ये सब पश्चिमी संस्कृति के प्रचार और विस्तार और इस्लामी संस्कृति को नष्ट करने के लिए किया था, जिसके समाज पर काफी गहरे प्रभाव भी पड़े। शाह और शाही परिवार भ्रष्टाचार और अश्लीलता में डूब गए और जनता और शासन के बीच खाई काफी चौड़ी होती चली गई। शाही शासन से नाराजगी का एक मुख्य कारण अत्यधिक भ्रष्टाचार था। वास्तव में इस भ्रष्टाचार ने पहलवी शासन की स्थापना के साथ ही दरबार में अपनी जगह बना ली थी। पहलवी शासन के अंत में इसने एक संस्कृति की जगह ले ली थी। शुरुआत में शाही शासन ने लोगों की नाराजगी से बचने के लिए इस पर पर्दा डालने का प्रयास किया था। इसी कारण शाही परिवार के सदस्यों ने खुद को लोगों से दूर रखने का प्रयास किया और दोनों के बीच एक नाजुक संबंध भी टूट गया। परिणाम स्वरूप दरबार में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जिसका आम लोगों से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं था। महिलाएं मोहम्मद रजा शाह की कमजोरी थी, इसलिए नैतिक भ्रष्टाचार में उसकी कोई सीमा नहीं थी। उसका दरबार फिल्मी सितारों और प्रेमिकाओं का अड्डा बन गया था। उसका ये शौक जवानी से मौत तक जारी रहा। इसके लिए उसने राष्ट्रीय कोष का जमकर दुरुपयोग किया और लोगों को कीमती उपहार दिए। वो एक अय्याश दीवाना था। वो अपने विदेशी दौरों में किसी शाह की तरह नहीं बल्कि किसी गुंडे मवाली की तरह व्यवहार करता था। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के तत्कालीन दूत फरीदून हुवैदा पेरिस की एक यात्रा के दौरान शाह के साथ थे। वो इस बारे में लिखते हैं, शाह ने अपनी एक या दो शामों में कई नाइट क्लबों का दौरा किया और अपने दोस्तों द्वारा पेश की गई लड़कियों के साथ समय बिताया और उन्हें कीमती उपहार दिए। कुछ महीने बाद एक पार्टी में मेरी उन्हीं लड़कियों में से एक से मुलाकात हुई जिनके साथ शाह ने वक्त गुजारा था। उसने बड़े गर्व से मुझे वो हीरे की अंगूठी दिखाई जो शाह ने उसे उपहार में दी थी। शराब नोशी, जुआ खेलना, नशा करना, धन इकट्ठा करना, महंगी यात्राएं करना, खजाना बर्बाद करना जैसी शाह की आदतें थीं। इस तरह के भ्रष्टाचार में अन्य दरबारी भी डूब चुके थे। मोहम्मद रजा शाह ने देश की सभी आर्थिक सुविधाओं और क्षमताओं को शाही परिवार और दरबारियों की सेवा में समर्पित कर दिया था। शाह देश और जनता की संपत्ति को बर्बाद करने तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि उसने देश की ऐतिहासिक और इस्लामी पहचान को भी खराब कर दिया था। शाह अपने अहंकार की वजह से लोगों से बहुत ही अपमानजनक तरीके से मिलता था। उसे ऐसा लगता था कि उसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए खुलेआम उनका अपमान करता था। 1974 में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह ने ईरान के लोगों को आलसी करार दिया था और कहा था, ये लोग कोई भी काम नहीं कर सकते, ये भेड़ों की तरह हैं। शाह की पत्नी फराह दीबा की माँ फरीदा दीबा अपने दामाद की आदतों के बारे में कहती हैं, पश्चिमी माहौल में अपनी परवरिश की वजह से मोहम्मद रजा शाह लोगों को नीच और जलील समझता था। अगर कोई उसके सामने खुद को साबित करने की कोशिश करता था तो तुरंत उसे किनारे लगा दिया जाता था। वो चाहता था कि देश में जो भी काम हो उसका श्रेय उसे ही दिया जाए और सभी लोग उसके नौकर बनकर रहें। सेना में भी उसकी यही नीति काम करती थी। सेना के कमांडर और अधिकारी उसके पिट्ठू बने हुए थे। शाह सेना में ऐसे चापलूस लोगों को भर्ती करना चाहता था जो सिर्फ उसके तलवे चाटते रहें। आधारिक आयोजनों में देखा जा सकता था कि किस तरह से उच्च सैन्य अधिकारी शाह के जूतों का बोसा लेते थे। उनकी कोई शख्सियत नहीं थी। ईरान की इस्लामी क्रांति ने देश की इस्लामी पहचान, लोगों की शख्सियत, विशेषकर नई नस्ल को महत्व दिया और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित बनाया। 1979 में इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद ईरान की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान फिर से जिंदा हुई। इस्लामी क्रांति ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि इस्लामी संस्कृति और धार्मिक पहचान के साथ वास्तविक महानता और सफलता को हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हुआ। अब हमें इजाजत दीजिए।
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز. شروتو ابھی آپ سن رہے تھے ساپتاہک کاریہکرم اجول بھوشیہ, اور اب سمے مکھیہ سماچاروں کے سارانش کا. ایران نے رکشا چھیتر میں 10 اپلبدھیوں کا اناورن کیا. امریکہ نے یوکرین کے راشٹرپتی سے امریکی سینٹ کی ورچوئل بیٹھک میں بھاشن دینے کا آہوان کیا. روس نے کہا ہے کہ پولینڈ آتنکوادیوں کے بھیجنے کے گڑھ میں پریورتت ہو گیا ہے. بھارت نے کہا ہے کہ اب بھی اس کے 1000 سے ادھک ناگرک یوکرین کے یدھگرست چھیتروں میں پھنسے ہوئے ہیں. شروتو ہمارا یہ کاریکرم آپ نے شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9390 کلو ہرٹز پر سنا. ہمیں آشا ہے کہ ہمارا آج کا پرسارن بھی آپ کو اوشیا پسند آیا ہوگا. تازہ سماچاروں سے اوگت ہونے کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھنا نہ بھولیں, پتہ ہے parstoday.com/hi. تو شروتو اسی کے ساتھ ہمارا یہ کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے. شبھ کامناؤں کے ساتھ آپ سے ودا چاہتے ہیں. خدا حافظ, شبھ راتری.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.